Om Shanti. Murli had 26th January 1995. अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ. स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो. सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ. बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति चाहे सेवा प्रति चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ जाता है. ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है. एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो. दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है. अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है. बाप दादा ने सुनाया था कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज. तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? हर सीजन का फल होता है ना. तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना. वो तो बाजार से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं. अभी इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहां से आता है. वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो. लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर वन भोग लगाएगी, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे, प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खुद खा जाते हो. तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है, सभी का काम है. फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है. आगे अब कोई नवीनता दिखाओ. वर्ष तो शुरू हो गया, 26 जनवरी की मुरली है 95. वर्ष तो शुरू हो गया है. बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है. उस समय का फल क्या है? आदि में जो वैराग था उसका फल क्या है? उस समय का फल आप लोग हो. अगर बेहद की वैराग वृद्धि नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती. ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी तन का हिसाब चुकतुक करते हुए भी बेहद के वैराग की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई. साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया, सेवा के प्रति अलग चीज है. स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना अंतर तो जानते हो ना. स्व प्रति बेहद का वैराग हो, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ. लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, कि जो और आने हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है. तो यहाँ पर तीन बातें कही है बाबा ने. सबसे पहली बात है, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ. स्वयं को शक्तिशाली बनाना है. इस जीवन का लक्ष्य ही है आत्मा में आध्यात्मिक शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है. जो बात पहले हमको डिस्टर्ब करती थी अब वो डिस्टर्ब ना करे. जो बात पहले हमको हिलाती थी अब वो बात हिलाए नहीं. किसी के बोल पहले गिरा देते थे अब वो गिराए नहीं. किसी का व्यवहार पहले दुखी कर देता था, अब वो करे नहीं। स्वयं को शक्तिशाली बनाना, शक्तियां स्वयं में भरना, स्वयं स्वयं को ही अनुभव हो कि अब मैं पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया हूं। पहले एक तीर लगता था तो घायल, अभी 100 तीर लगे हुए हैं, फिर भी चल रहे हैं। भीष्म पितामह अप्रभावित, खून बह रहा है, पहले खून देखकर ही रोना आ जाता था, अभी खून ही खून, परंतु फिर भी अप्रभावित। जो योद्धा होता है उनकी शोभा क्या होती है? जब तक खून नहीं निकलता मजा नहीं आता है उनको, जोश नहीं आता है। और अपने घाव को वो, कोई कोई योद्धा तो ऐसे होते हैं, प्रतिशोध की ज्वाला जब धधकती है तो जिस शत्रु ने हमला किया और जो घाव है, अगर कोई उसकी मलम पट्टी करने आता है तो क्या कहते हैं? मत करो, याद रहने दो। दुर्योधन की ऐसी ही स्थिति थी, कुछ खली की तो अपने घावों को देखकर योद्धाओं में और पावर बढ़ जाती है, और शक्ति बढ़ जाती है। आक्रमण किया है शत्रु ने, खून बह रहा है, बहने दो। स्मृति जागृत रहेगी कि सोना नहीं है, शत्रु अभी जीवंत है, शत्रु अभी जीवित है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, मेन कैंप, जर्मन में लिखी है, उसका इंग्लिश में अनुवादित हुई है। उसमें उसने एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है अपनी आत्मकथा में, कि मनुष्य को हमेशा अपने शत्रुओं से घिरा हुआ रहना चाहिए। जब शत्रु आसपास होते हैं तब अलबेलापन हो ही नहीं सकता, कोई अलबेलापन आ नहीं सकता, सतर्क रहता है व्यक्ति। कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी शत्रु हमला कर सकता है। इसके लिए जर्मनी के लिए उसने लिखा है कि आसपास हे जर्मनी निवासियों सुनो, शत्रु ही शत्रु है, एक को भी सोना नहीं है। अपनी देश के लोगों में उसने शक्ति भर दी अपने वचनों से, इस तरह के भाषणों से। तो जब आसपास शत्रु होता है तो हम, और माया तो छत से, यहां से, वहां से, खिड़की से, दरवाजे से, कोने से, नीचे से, ऊपर से, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से वो एंट्री ना करे। गुप्त द्वार है उसके भी, जमीन भूकंप की तरह फाड़ कर बाहर निकलेगी जब हम समझेंगे यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है। तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना, सभी परिस्थितियों में इतने शक्तिशाली कि कोई प्रभाव ना हो, संसार की किसी आत्मा के बोल का, व्यवहार का, किसी परिस्थिति का, प्राकृतिक आपदाओं का, विकराल आने वाली, विकराल रूप दिखने वाली परिस्थिति, उससे भी अप्रभावित। कोई चीज हमें भयाक्रांत ना करे, भयभीत ना करे, कुछ भी हो, इतनी स्वयं में शक्ति भरनी है। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ, सहज योगी करते करते अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्वप्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ जाता है। स्व प्रति, सेवा प्रति, संबंध संपर्क प्रति, ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, कॉपी किसको करो? एक बाप को करो। दूसरों को देखने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है, दूसरों की कमी बहुत जल्दी दिखाई देती है, अपनी कमी कमी दिखाई नहीं देती है, छिप जाती है या माफ कर देते हैं स्वयं को। अगर हमें योग में कभी नींद आ गई तो कितना जल्दी हम अपने आप को माफ कर देते हैं, पर दूसरे को देख लिया योग में सोते हुए, जब भी वो दिखेगा तो वो याद आएगी ये सो रहा था, और जब तक उसको बोल ना दूं जाकर कर ले जा, ठंडा नहीं होता है, जब तक उसको बता ना दूं कि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा किया जाता है, श्रीमत ये कहती है, श्रीमत सिखाने के लिए बहुत ही आतुर है, प्राण प्यासे है, दूसरों को कैसे सिखाए, कैसे समझाए, कैसे कल्याण करे, कैसे बताए कि ये नहीं खाना, ये खाना चाहिए। बाप दादा ने सुनाया था ना, क्या सुनाया था, क्या सुनाया था? नजदीक नजर के बारे में, नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, हाइपरमेट्रोपिक, दूर की नजर तेज हो गई है, दूर का अच्छे से दिखाई देता है, कौन अमृत वेला उठा नहीं उठा, कौन क्लास में था कौन नहीं था, भोजन करते समय कौन क्या क्या बातें कर रहा था, टेबल टॉक, हम तो मौन में खाते परंतु दूसरे बातें करते करते खाते हैं, कब अवसर मिले और उनको सिखा दिया जाए। तो अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पूरी हुई, तो क्या सुना, स्नेह के साथ साथ स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, स्वयं में पावर भरो, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप, सहज योग करते करते अलबेलापन नहीं आ जाए, स्व के प्रति भी अलबेलापन नहीं, सेवा के प्रति भी अलबेलापन नहीं, संबंध संपर्क में भी अलबेलापन नहीं, और स्वयं को देखो, एक दूसरे को, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी। बाबा ने उदाहरण रखे, बस इनको देखो, बाप को देखो और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को देखने की आदत बहुत ज्यादा हो गई, आदत है ये भी, आदत कैसे बनती है, आदत एक ही चीज बार 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 रिपीट करो तो आदत बन जाती है, परंतु जिसको ये आदत है उसको ये नहीं पता कि ये आदत भी है, ये भी एक आदत है। इसके लिए अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है, इस मार्ग में केवल स्वयं को ही देखना है। कहां से हमने ये यात्रा शुरू की थी और कहां पहुंचे हैं, जिस दिन ज्ञान में आए, जिस दिन से चल पड़े इस मार्ग में और आज दिन तक कितनी उन्नति हुई है, या जब आए थे और जब वो कमजोरी थी, आज भी वो कमजोरी है कि समाप्त हुई है, कहां तक उन्नति को प्राप्त किया है। पहले हृदय बहुत छोटा था, अपने बारे में सोचते थे, क्या अभी सभी आत्माओं के बारे में सोचने का संकल्प है, सभी के कल्याण का संकल्प मन में आता है? एक सूफी संत हुआ है सरमद, जिसका नाम था सरमद, उसके छाती में नासूर हो गया, बहुत बड़ा घाव, और उसमें बहुत सारे कीड़े, मुस्लिम फकीर, बहुत सारे कीड़े, मैगॉट्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो वो जो मैगॉट्स जो कीड़े थे, जब नमाज के लिए झुकता था तो कीड़े नीचे गिरते थे, तो वो क्या करता होगा फिर से कीड़ों को उठाता था और रख देता था, फिर से कीड़ों को उठाता था और यहाँ रखता था, लोग उसको कहते थे क्या पागल हो गए हो, वो कहता था कि मैं तो खुदा के सामने झुक रहा हूं, इसके लिए मेरी सुरक्षा तो हो गई, मुझे अपनी चिंता नहीं है क्योंकि मैं उसकी शरण में हूं, परंतु ये जो है ये तो बेचारे नमाज नहीं जानते, तो इनकी चिंता मुझे है। और जैसे वो बूढ़ा होने लगा, बुढ़ापे में तो उसने नमाज करना भी छोड़ दिया। वो कहता था कि नमाज में तो शरीर झुकता है, मैं तो खुदा के सामने सदा झुका ही हुआ हूं, अब मैं इन कीड़ों को क्यों और तकलीफ दूं कि वो नीचे गिरे, क्योंकि जब नीचे गिरते हैं तो एक दो मर भी जाते हैं, उनका तो जीवन अभी लंबा है, मेरा तो मुझे पता है ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इस्लाम में तो पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है, ये कि मेरा अंतिम जन्म है, तो ये जो कीड़े गिरते हैं और मरते हैं मैं क्यों उन्हें गिरने दूं। वो तो पूछना पड़ेगा अभी। परंतु ये कहानी इस्लाम में काफी सुनाई जाती है कि इतना इस संसार के हर प्राणी से प्रेम, हर व्यक्ति से प्रेम, वो प्रेम अभी संकुचित नहीं रहा, बढ़ चुका है। वैसा ही पाश्चात्य जगत में रोमन कैथोलिक सेंट सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी हुआ है, एक सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, असिसी नाम की एक जगह है वहां का, वो जो संत है उसके जीवन में दिखाया है इतना प्यार है उसे सबसे। ओ ब्रदर डग, ओ ब्रदर बर्ड, वो जो पक्षी पक्षु पशी जो भी जानवर है वो सारे उसके पास आ जाते थे, और वो सबसे भाई बहन इस तरह से बात करता था, सिस्टर बर्ड ब्रदर एलिफेंट इस तरह से वो सबसे बातें करता था, चिड़ी। कल किसी ने बहुत अच्छा हमको भेजा था, जो हमने सुशील भाई को भेजा चिड़िया के बारे में, चिड़िया कहती है कि क्या कहती है सुशील भाई,
गर्मी आ गई
है, अपने छत में दाना रख देना और थोड़ा पानी भी रख देना, आपकी चिड़िया। तो जब आए थे तब हृदय छोटा था, अब बड़ा हुआ है कि वैसा ही है, अपने ही बारे में सोचते हैं बस, वही संकुचित हृदय कि बड़ा है, तो उन्नति कितनी हुई है इस अध्यात्म के मार्ग में, शक्तिशाली स्वयं को कितना बनाया है, स्नेह तो था पर शक्ति कितनी भरी है उसकी चेकिंग करो। और दूसरी बात कही, अब दूसरों को देखना बंद, दूसरे पुरुषार्थ करें ना करें हमें करना है क्योंकि बाप ने कहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं करने दो, हमें वो नहीं करना है, हम मार्ग बाबा ने दे दिया है उसी मार्ग पर चलना है। ये एक पॉइंट थी। ये मुरली है 26 जनवरी की, जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के दो कदम, फरमान बरदार और वफादार, इसके ऊपर फोकस किया है सारा। उसका ये बीच का पैराग्राफ है, इसके बीच में और एक पैराग्राफ है वो छोड़ दिया है यहाँ पर, वो है वफादार पर, वो भी बड़ा शक्तिशाली पैराग्राफ है। तो आगे अब अभी क्या करेंगे, ये हमेशा का बाबा का प्रश्न है, क्या अब तक तो ये सुन लिया अभी क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना है, इस तरह के बाबा के प्रश्न होते, टॉपिक चेंज। सीजन का फल क्या देंगे, हर सीजन में फल आता है, तो बाबा पूछ रहे सीजन का फल क्या देंगे, कि सिर्फ बाप आया मिला मनाया मुरली सुनी ये फल है, हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे, भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। चाहिए क्या बाबा को, कौन सा फल चाहिए मंजू में, वो तो बाजार से आ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा को स्थूल कुछ चाहिए ही नहीं, सबसे पहली बात तो स्थूल कुछ भी चाहिए नहीं उसे। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे, लगाना है या मुश्किल है, भेंट लगाते हुए भी सोचते हैं कि वापस मिल जाए कुछ तो। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जब वो कुछ देता है किसी को तो इच्छा रहती है। पाश्चात्य जगत में एक और एक बहुत बड़ा एक संत हुआ है, संत जैसा ही था परंतु वह नास्तिक प्रवृत्ति का था, परंतु लोगों ने उसे संत कहा है। उसका नाम था गुरजीएफ, फोर्थ वे करके उसने सिद्धांत प्रतिपादन किया है जो ब्रह्मा कुमारीज के कॉन्सेप्ट से कई जगह मिलता जुलता है। द फोर्थ वे उसके कॉन्सेप्ट का नाम है। वो गुरुजीएफ ऐसा था, एकदम ही विचित्र प्रकार का व्यक्ति था। जो भी उसके पास आता था सलाह मांगने के लिए, वो कहता था कि आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को आदत पड़ गई है मुफ्त में पाने की। आध्यात्मिक दिखा कहीं प्रवचन दिखा तो हमें हर जगह मुफ्त होता है, तो वो कहता था मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा मैं, मेरे पास जो ज्ञान है वो जो भी आता था, अगर कोई स्त्री आ गई तो गहने ले लेता था उसके, पहले गहने बाहर निकालो उसके बाद में। तो एक बार ऐसी ही उसके पास एक स्त्री आती है और उसके पास गहने होती है बड़ी समृद्ध परिवार की, तो वो उसको कहता है कि वो कुछ समस्या सुनाती है, वो कहती है ठीक है जो है तुम्हारे पास रख दो निकाल कर। तो उसको थोड़ा ये होता है दू की नहीं दू, दू की नहीं दू, बोलती थोड़ी देर में आती हूँ, और बाहर जाके बाकी लोग होते हैं उनसे जरा राय मशवरा करती है। तो वहां एक दूसरी स्त्री होती है, वो कहती है कि मुझसे भी ऐसा ही किया था, पर मैंने तो दे दिया था और दूसरे दिन वापस मिल गया था, इसके लिए निश्चिंत रहो, ये ले तो लेते हैं परंतु वापस दे देते हैं। तब उसके जान में जान आती है, वो कहती है बहुत अच्छी बात है। तो वो जाती है, वो कहती है माल निकालो, तो रखती है और फिर जो भी समस्या है उसको सुनाती है और वो उसको हल सुनाता है, वो चली जाती है। अब इंतजार, माल वापस कब मिलेगा? एक दिन, दो दिन, दस दिन, 15 दिन, वो देता ही नहीं। फिर एक दिन तो उसके कानों तक एक खबर पहुंचती है कि वो स्त्री कह रही है कि अभी तक दिया क्यों नहीं, आप तो कभी रखते नहीं किसी का। वो कहता है कि उसने दिया ही नहीं, जब दे रही थी तो नजर थी वापस मिलने के ऊपर। तो यहाँ भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये भेंट दे रहे, पर देते समय मन में लालच है, हम ये देंगे तो क्या मिलना चाहिए मंजू बहन? बाबा तो देता है पर देते समय लेने का ही भाव है। ये तो दे तो दिया पर मिलना चाहिए, एक दिया क्योंकि बाबा ने वादे वादे बहुत कर रखे हैं, एक दोगे तो 100 मिलेगा 1000 मिलेगा, तो देते समय ही वो भाव है कि ये दू तो तुरंत मिलना भी चाहिए। बाबा की ये सेवा करूं तो तारीफ मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, सबके प्रति हमारे पीछे सब सब आ जाने चाहिए, ये सारे भाव उसमें है, साथ साथ ट्विन डबल डबल चल रहा है सब। तो तो क्या होगा, जैसे उसको लेने का भाव नहीं है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, ये एक मन में संकल्प रखो। इस संसार की जो हमारी महिमा हो रही है, नाम कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, यहाँ का कुछ भी नहीं स्वीकार करना है, सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे, यहाँ की प्रशंसा टिमटिमाते दीपक है, सूरज भाई हमेशा कहते हैं ना, तो यहाँ से अब प्रभावित था। तो देखेंगे कि नंबर वन भोग कहाँ से आता है, वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं कहते हो, आदत होती है ना कही हो कि कुछ भी मांगो तो तुरंत दे देते, ना नहीं कहते, कहते हैं परंतु बाद में देते नहीं, वो दूसरी बात है, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करना है, टीचर्स नंबर वन भोग लगाएगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे, प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर वालों का काम है। किस भोग की बात चल रही है, ये कोई स्थूल भोग की बात ही नहीं चल रही है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल मिलाना, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, अब कोई नवीनता दिखाओ, अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो चुका है, बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा याद आता है, उस समय का फल कौन हो, आप हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतनी नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी, तन का हिसाब चुकतु करते हुए भी बेहद के वैराग की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्वप्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है, स्वप्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना, अंतर तो जानते हो ना। स्वप्रति बेहद का वैराग, सेवा प्रति साधन को कार्य में लगाओ। स्वयं के प्रति कठोर, दूसरों के प्रति नरम। दूसरों ने गलती की, ठीक है कोई नहीं बात, माफ। खुद ने गलती की तो संतोष भाई क्या करेंगे, स्वयं को
माफ कर देंगे।
पहले दंड दो थोड़ा, स्वयं स्वयं को दंडित करना। और कैसे दंड दोगे, भोजन न खा के ये सब दंड नहीं देना, इस तरह का 10 बार मुरली पढ़ने का स्वयं को दंड दो। दो घंटा योग ज्यादा, ये बड़े काम है, बड़ी पीड़ादायक काम है ये, स्वयं को ये दंड दो। जब तक पावरफुल योग ना हो, जब तक मुरली रक्त की, ये जो धमनियों में रक्त की तरह प्रवाहित ना होने लगे, तब तक उसे पढ़ते रहो एक रूप जब तक। ये है दंड, ये दो ही दंड देना, बाकी दंड तो बहुत आसान है। सोचो कि आज 8 घंटे की जगह 10 घंटा सेवा कर लेंगे, ये कोई इतना पावरफुल दंड नहीं है, वो भी दंड है परंतु ज्ञान और योग।
तो रोज रोज गलती करो फिर 10 रोज मुझे
लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, जो और आने हैं उनको करना है। बाबा पूछ रहे किसको करना है फॉलो फादर, आपको करना है या जो आने वाले हैं उनको करना है। हम ये सोचते हैं ना, ये हमारे लिए ना, इनके लिए कहा जा रहा है। उस दिन वो बहन जी कह रही थी ना, चंडीगढ़ कहाँ से बहन जी, सिरसा की बहन जी, कोई भी पॉइंट आती है मुरली में तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये पॉइंट आपके लिए आज बाबा ने कही है, आपको नींद बहुत आती है ना, ये पॉइंट आपके लिए है। मेरे लिए भी है, ये नहीं हम देखते, दूसरों के लिए देखो। लोभ बहुत है ना, तुमको अपने बेटे की घर की याद आ रही है ना, आज बाबा ने बोला है, तुम्हारे लिए कहा है निर्मोही बनो, खास तुम्हारे लिए मुरली है ये। ये फट से ध्यान में आता है कि ये मुरली किसके लिए है, ये निर्मोही की पॉइंट, इसमें बहुत मोह है, ये माता में बहुत ही मोह है, पकड़ेंगे माता को, आज तुम्हारे लिए पॉइंट है मुरली में। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, या जो आने वाले हैं उनको करना है। आप लोगों को करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये दृढ़ता है। क्या करना है, फॉलो फादर, जैसा उसने किया, जन्म में फॉलो, बचपन में फॉलो, युवा में फॉलो, सेवा में फॉलो और अंतिम स्थिति में फॉलो, स्थापना में फॉलो, पालना में फॉलो, सहयोग में फॉलो, स्वयं विघ्न विनाशक बनना और दूसरों को भी बनाना, इसमें फॉलो, हर सब्जेक्ट में फॉलो, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवा में, चारों ही सब्जेक्ट में एक में भी फॉलो फादर यदि कम हो, उसी के हिसाब से अंतर पड़ेगा। बाबा ने तो किस किसके लिए कहा है ये बात, संडे की मुरली में, विश्व राजन, विश्व महाराजन बनने का जो आधार है, फर्स्ट और आठवां, उसका ये आधार है, किसने कितना फॉलो किया, अनुकरण अनुसरण अनुगमन कितना किया, उस आधार पर मार्क्स जमा होगी, टोटल मार्क्स देखी जाएगी। क्या कहा था, टोटल मार्क्स, इसकी टोटल होगी। अगर हर इसमें 10-10 मार्क दिए जाए तो उसकी टोटल फिर 13 पॉइंट्स थी वो 1300 10 10 या 100 100 मार्क ले लो, 1300 में से अभी किसको कितने मिलते हैं। सबसे पहले संस्कार में फॉलो कितना किया, हर सब्जेक्ट में फॉलो कितना किया, इसकी पूरी लिस्ट बनाओ। स्वयं विघ्न विनाशक तो बने, परंतु औरों को कितना विघ्न विनाशक, दो पॉइंट है उसमें, उसमें कितनी मार्क्स, इसकी फिर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के आधार पर, उसमें भी पॉइंट पॉइंट। हमको याद है जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे 95% जो थे, कम से कम 15 लोगों को 95% थे, उसमें पॉइंट पॉइंट पर मेरिट लिस्ट थी, 95.72, 95.70, 95.52, उसमें हमारा जो रैंक था वो 10वें नंबर पर था। उसके पहले सारे 95% वाले थे, परंतु पॉइंट पॉइंट में मार्क्स थी। तो ऐसी इधर भी है, ये तो वो तो संसार की परीक्षा है, ये परीक्षा कौन सी है, जीवन की, प्रारब्ध की, पूरे कल्प का, कल्प कल्पांतर की ये बाजी है। तो यहाँ तो पॉइंट से भी पॉइंट, उसमें भी सूक्ष्मतर सूक्ष्म कुछ ना कुछ अगर जो होगा वो उसके ऊपर ये मार्क्स है। अच्छा, ओम शांति।